भाइयों और बहनों, गुरुदेव के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज इस जप दिवस को पूरे भारतवर्ष के अंदर, हो सकता है कि हमारे भाई विदेश में रहते हो, वहां तक भी ये सीढ़ी पहुंची हो कि 125 करोड़ महामंत्र का जाप यह हमारे जप दिवस को सफल बनाने और जप का जो प्रायोगिक रूप है कि जप के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आए, तो ये बहुत बड़ा अनुष्ठान हमें दिया। और अखिल भारतीय योग परिषद और समस्त स्थानीय योग परिषदों कृति भी ये हमारा धर्म संघ कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि गुरुदेव की दृष्टि की आराधना करके आज हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह अनुष्ठान किया और निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा से ये लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे। अब 10:30 बजे तक हमें बताया गया है कि आज कार्य संपन्न करना है।
आपको जो संदेश अच्छी मिली है, जिनकी भर गई है वो तो ठीक है, जिनकी नहीं भरी वो कार्यकर्ताओं को बाहर देने भर्ती हुई जरूरी है। आपको सब लगता है जिनके अर्थन सुविधा बहुत सारे धन्यवाद।
भाई और बहनों, अभी जो हमारे पास 10:30 बजे का जो समय है, आधा उसका समय मैं उपयोग करूंगा, आधा समय भाई कांतिलाल जी करेंगे जप दिवस के ऊपर। तो मुझे ये बताया गया कि आज हमारी काफी अच्छी उपस्थिति होगी, तो हमें किस तरीके से अपने घर में पारिवारिक सौहार्द रखना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ चिंतन किया जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं भाई और बहनों कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान महावीर की वाणी सुनने को मिलती है, और हमारे ऐसे गुरु और ऐसे हमारे जो है वो साधु साध्वियां समय समय पर हमको शेष काल में और उसके साथ साथ में जो अपना ये चातुर्मास का समय होता है गुरु कृपा से वो संभालने आते हैं। बंधुओं, हमारा घर है वो एक स्वर्ग बनना चाहिए, एक आश्रम बनना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन है वह एक लिमिटेड जीवन है। जरूरी नहीं कि हम पूरे सैकड़ों वर्ष तक जिएंगे, लेकिन जितने समय तक हम अपना जीवन यापन करें वह हमारा घर जो है एक मंदिर बनना चाहिए। घर को मंदिर बनाने के लिए, घर को एक स्वर्ग बनाने के लिए हमारे बीच में पारिवारिक सौहार्द होना चाहिए। परिवार के जितने भी हम सदस्य हैं, हमारी पुरानी पारिवारिक व्यवस्थाओं को देखें तो हम 30-30, 50-50, 100-100 लोग जॉइंट फैमिली के अंदर एक साथ रहा करते थे, दो दो तीन तीन जनरेशन एक साथ रहा करती थी, और वो सारा घर जो है एक सर्व समान रहता था, क्योंकि सभी के बीच के अंदर प्रेम की भावना थी, सम्मान रहता था और आदर की बात होती थी। लेकिन क्यों समय बदला है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, और इस समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की हुई की है, और हम एक दूसरे स्थान पर जाकर के बस गए, दूर दूर विदेश के अंदर बस गए हम जाकर के, हमारे परिवार सीमित हो गए हैं, और परिवार में भी न्यूक्लियर फैमिली यानी जो सिंगल सिंगल फैमिली आजकल बनने लगती है उसमें कुछ व्यवस्थाएं भी है और व्यवस्थाएं भी है। तो बंधुओं, जैसे भी हो, जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें हमें संस्कारों को सहेज कर रखना बहुत ही जरूरी है। एक हमारी प्रसिद्ध कहावत है कि पूत कपूत का धन संचय, हम गृहस्थी हैं, हमारे लिए कमाना आवश्यक है, लेकिन कितना कमाया जाए, अनुव्रत की भाषा में बात करें, जितनी हमें आवश्यकता हो उतनी हमें जो है हमारी प्रामाणिक जो आजीविका का हम जो है अर्जन करें बंधुओं, तो उसके लिए हमें जो समय और आपाधापी हम आज कर रहे हैं, آپ پرتسپردھا میں جا رہے ہیں, ہوڑ میں جا رہے ہیں, تو وہ ہمیں نہیں کرنی ہے. اپنا اپنا جیون ہے, اپنا اپنا بھاگیہ ہے. ہماری تو جو لائف اسٹائل ہے, جیون چریا ہے, وہ سب اپنے آپ میں ایک بڑا دھن ہے. اور ایک وشیش بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا دھن ہمارے بچے ہیں. اور ہمارے آج کے بچے کل ہمارے دیش کے اچھے ناگرک بنیں گے. اور جیسا ہم نے ہمارے پورجوں کا آدر سمان کیا ہے اور ان کے نام کو سوا گنا کیا ہے, اسی طریقے سے ہماری جنریشن, ہمارے گروؤں کا, ہمارے باپ دادوں کا, ہماری پیڑھی کا, ہمارے کل کا نام روشن کرے. اور جو مریادائیں, اچھی پرمپرائیں ہمارے چل رہی ہے, وہ نرنتر چلی رہے, تو اس کو نرنتر چلانے کے لیے یہ جو سنسکار ہمیں دھرم سنگھ سے مل رہے ہیں, گروؤں سے مل رہے ہیں, سادھو سادھیوں سے مل رہے ہیں, ویاخان سے مل رہے ہیں, وہ سب ہمیں سہیج کر رکھنا ہے اور اپنی بھاوی پیڑھی کو دینا ہے. بندھوؤں, بچے پر سب سے زیادہ جو ہے, بچے کی پرتھم پاٹھ شالا ماں ہوتی ہے. جیسی ماں ہوتی ہے ویسا ہی بچہ سنسکارت ہوتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کے آچار وچار اور ان کا جتنا پربھاؤ ہے بچے پر پڑنا چالو ہو جاتا ہے. مہابھارت کی آپ گھٹنا بتا رہے تو ابھیمنیو نے اپنی ماں کی گرو کے اندر جب جنم لیا تو جو چکر ویو جس سے کہ یدھ لڑا جانا تھا, وہ ماں کے جو ہے وہ پرشکشن سے اس نے چکر ویو کو جو ہے اپنے ماں کی کوکھ کے اندر سیکھ لیا اور اس کے اندر وہ سفل رہا. بندھوؤں, تو ماں کا بہت بڑا رول ہے. تو ماں کو اپنا سب سنسکاری ہونا چاہیے, اور خاص طور سے ماں گربھوتی ہو تو اس وقت کے اندر ہمارے کتنا آدموں میں آتا ہے, ہمارے گرنتھوں میں آتا ہے کہ ماں کو 9 مہینے کا سمے پورا دھرم دھیان کے اندر بتانا چاہیے. تو نشچت طور سے جو اچھے سنسکار ہوتے ہیں گرب میں پلنے والے بچے پر ہوتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی سوکشم کی, بات ہو گئی اگیات جگت کی. لیکن جو جگت ہمارے سامنے ہے, جو بچے آج ہمارے سامنے ہیں, بچے اچھی اچھی پڑھائیاں کرتے ہیں آج, وگیان کی, انجینئرنگ, ڈاکٹر, سی اے, ایم بی اے, سی ایس, بڑی بڑی آئی ایس, آئی پی ایس, بچے ڈگریاں حاصل کر کے وہ استھان گرہن کر رہے ہیں. آج ہم نے گرو کرپا سے وہ استھان ہماری یوگیتا کا پا لیا ہے. اور ہمارا یہ 13 پن دھرم سنگھ ایک چھوٹا سا دھرم سنگھ ہے. 4 لاکھ کی آبادی والا 85,000 فیملی کا چھوٹا بڑا دھرم سنگھ ہے. پر ہمارے گروؤں کی, جب جب ہمارے گرو ہوئے ہیں, سبھی 11 گروؤں نے اس سمے کے اندر کتنا سمے ہمارے پر لگایا, کتنا کرونا کی کہ میرے شراوک سوشراوک بنے, سنسکاری بنے, دھارمک بنے, نشاوان بنے, پرتشت بنے. بندھوؤں, اسی کا پھل ہے کہ ہم چھوٹی آبادی ہوتے ہوئے بھی آج 13 پن دھرم سنگھ ایک جین دھرم کا پریائے بنا ہوا ہے. آج اپنے آپ کو 13 پنتھی کہتے ہوئے گورو کی انوبھوتی ہوتی ہے. مجھے کئی بار دگمبر سماج, مورتی پوجک سماج, استھانک واسی سماج میں جانے کا کئی بار, بہت بار اوسر ملتا ہے. اور میں نے خاص طور سے دیکھا ہے کہ دگمبر سماج کے سادھو اور آچاریہ, مورتی پوجک سادھو اور آچاریہ ہماری بات کو سننا پسند کرتے ہیں, ہمارے کو وریتا دیتے ہیں کہ آج آج آئے ہیں یہ تو ان کا ہی باطن ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا گرو کتنا ان کو اچھا ٹرین کرتا ہے, کتنا انوشاسن ہے. اور ہمارے یہاں تو کہاوت ہے کہ 13 پنتھ جو ہے, 13 پنتھ کی کیا پہچان, ایک گرو اور ایک ودھان. بندھوؤں, یہ ہمارا سوتر آج ہم کو اونچائیوں پر لے جا رہا ہے. سنیما کھلو جیونم, آج انوت کا یہ گوشت آج ہمیں کتنے کتنے اونچائیوں پر ہم لے جا رہا ہے ہم سبھی جانتے بندھوؤں. ہمارے پاس بہت بڑی دھروہر ہے, ہمارے پاس بہت بڑی کھاتی ہے, لیکن یہ کھاتی یہ دھروہر ہمیشہ بنی رہے اس کے لیے ہمیں پریاس کرنا چاہیے کہ ہم کچھ سمے گھر میں اپنے بچوں پر لگا لیں. اب دیکھیے یہاں پر بچے نہیں آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے صبح وہ اسکول جاتے ہوں لیکن وہ راتری میں آ سکتے ہیں, دوپہر میں آ سکتے ہیں. تو بندھوؤں اس پوٹ کو جیتنا ہے, وہ پوٹ مولیوان ہے, وہ پوٹ ہمارے لیے ہیرا ہے, وہ ہمارے لیے ڈائمنڈ ہے. ہم کو تو جتنا ترقی کرنی تھی ہم نے گرو کرپا سے کر لی ہے, کرتے جا رہے ہیں, لیکن اس نئی پیڑھی کو ترقی کرانی ہے. اس نئی پیڑھی کو ہم نے جو جتنا ہم دھن دینے کا پریاس کرتے ہیں اس سے زیادہ سنسکار دینے کا پریاس کریں. مجھے اچھی طرح سے دھیان ہے کہ میری ماں, ہم 10 بھائی بہن تھے, یہ گزر گئے 9 ہیں ورتمان میں. ہماری ماں جب تک اتنی وہ دارمک تھی ہر ایک کو پوچھتی کہ تم نے نوکار منتر گنا کہ نہیں گنا, اور تم نے سب کو پرنام کیا کہ نہیں کیا, تب وہ ناشتہ ڈالتی تھی بندھوؤں. تو آج ہمیں گھروں میں ایسے سنسکار ڈالنے چاہیے, بڑوں کو پرنام. بندھوؤں پرنام میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں ونے ملتی ہے. ونے سبھی گنوں کی پاٹشالا ہے, ونے سبھی گنوں کی کھان ہے. اگر ایک ونے آ گئی تو آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ میں جو دوسرے گن ہیں وہ لے کر کے آتی. بندھوؤں یہ ونے پرنام سے آتے ہیں. آج ہم دیکھیے کہ کوئی بزرگ کو, کوئی چھوٹا بچہ, یوور, کوئی بھی پرنام کرتا ہے تو اس کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے, مجھے میرے ماتا پتا نے, میرے گرو نے آشیرواد دیا. اور ہم کو بھی کتنا اچھا لگتا ہے کہ میری جو سنتان ہے وہ میری بہوئیں ہیں. وہ دیکھیے کتنی سنسکارت ہے کہ وہ صبح اٹھ کر کے سب کو پرنام کرتی ہے. بندھوؤں تو ایسے سنسکار ہمیں بچوں میں ڈالنے چاہیے. بچہ اٹھتے ہی یہ پریاس کرو کہ وہ نوکار منتر جتنا اس کے پاس 5 منٹ کا سمے ہے اتنے سمے تک نوکار منتر کی مالا, گروؤں کی مالا, وشو شام کی مالا جو ہے وہ اوشیہ گنے. اور ایک آج کل ہیلو ہائی بائی ٹاٹا کی یہ جو پروتی چل رہی ہے یہ ہمیں روکنا ہے. ہمیں گھر میں بچے کو سکھانا ہے کہ گھر میں کوئی بھی آئے تو جے جنندر, اور کسی کو ہم وہ پرستان کریں تو جے جنندر بولا جائے. اور بھی بندھوؤں ہم لوگ بھی ہمارے ویاپاری روپ سے کسی سے بات کریں تو ہم اپنی طرف سے جے جنندر بولا کریں. ہمارے راجستھان کے ہمارے جوش پرجنر مجرو صاحب کی بہت بڑی کتا ہے, تو جو مجرو صاحب بولتا ہے تو میں اسے نویدن کرتا ہوں, بھیا مجرو صاحب میں رات کی پروتی ہے, آپ جے جنندر بولیے. آپ کو تو سواگت کرنا ہے ہمارا. جے جنندر وراٹ کی اور جاتا ہے, اس میں بھگوان کا نام آتا ہے اور سہج ہی ہمارے ایک بھگوان کی سمرتی ہو جاتی ہے. تو ہمیں جے جنندر کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ ہمارے لیٹر پیڈ کے اندر, ہمارے بولنے کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر جہاں جہاں ہو ہمارا جین کا پرتیک لگنا چاہیے. بندھوؤں اور ہر گھر کے, ہر جین پریوار کے گھر کے آگے جین کا پرتیک اوشیہ ہونا چاہیے. یہ ہماری پہچان ہے کہ یہ جین کا گھر ہے. اس سے سہج جو ہے سادھارمک واتسلیہ بنتا ہے اور ہماری پہچان ہوتی ہے. بندھوؤں آج 125 کروڑ کی جن سنکھیا ہے. اس 25 کروڑ کی جن سنکھیا میں ہمارے جین لوگوں کی 125 کروڑ کی جن سنکھیا ہے. اور آج بھارت سرکار مانتی ہے, آج 36 کو مانتی ہے کہ جین ایک ایسا ویکتی ہوتا ہے, جین ایک ایسا دھرم ہے جو پرمانک دھرم ہے, شدھ دھرم ہے, اہنسا کرمو دھرم کا وشواس کرتا ہے. یہ وشوسنی ہے, یہ پرتشت ہے. اس کے ساتھ ویاپار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی ویکتی جین ہونے کے ناطے ہم سے ویاپار کرنا پسند کرے گا, ہم سے سمبندھ جوڑنا پسند کرے گا, یہ ہماری پرتشتھا ہے. یہ ہمارے گروؤں کی پرتشتھا ہے, یہ ہمارے تیرتھنکروں کی پرتشتھا ہے, یہ ہمارے باپ داداؤں کی پرتشتھا ہے, یہ ہمارے پورجوں کی پرتشتھا ہے. تو بھائی اور بہنوں یہ پرتشتھا سنکرانت تبھی ہوگی کہ نئی پیڑھی خاص طور سے بچے ہیں, یوک ہیں, वो एक नियम बना लें कि मेरा सारा जीवन सुबह से शाम का जैन संस्कारित होगा। बंधुओं कुछ न कुछ हम करते हैं, दिन भर संस्कार के नाम पे कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की पाचन शक्ति अच्छी है और रोज उसको सीधा खाने को उसके भाग्य से मिलता है और पचाने की शक्ति है, कोई शरीर में बीमारी नहीं है, तो सीधा क्यों नहीं खाएगा? खाना ही चाहिए। हमारे बाप दादे किलो किलो घी पी लिया करते थे क्योंकि उनमें पचाने की शक्ति थी। बंधुओं तो हमें रोज सीधा खाने का दी है कि वैसा धर्म मिला, वैसे गुरु मिले, ऐसे हमें ब्लड में हमारे खून में ऐसे संस्कार है तो हम उसको लगातार क्यों नहीं रखें? और बंधुओं पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमने का जो है वो काम पड़ता है और 365 जो धर्म दर्शन है उनके बीच में वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में हमने जैन धर्म को रखा है और हिंदुस्तान के 55 दर्शनों के अंदर जैन दर्शन को रखा है। और मैं आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जैन दर्शन जो है लोगों ने कराया है, उसको पांच मार्क्स दी है, उन्होंने माना है कि वाकई कोई ट्रू रिलीजियन है, वाकई कोई सही धर्म है, वाकई कोई आत्म धर्म है, वो जैन धर्म है। तो खास करके मेरा समय हो रहा है, मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि गुरु कृपा से, ऐसे ऐसे आचार्यों की कृपा से हमें सहज ही ऐसा जीवन मिला है तो हम खुद संस्कार रहे, संस्कारित रहें अपने बेटों में और खासकर अपने पोतों में। जो भावी पीढ़ी है वह पीढ़ी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और वह पीढ़ी ही हमारा आगे जाके नाम रोशन करेगी। उनको हर लेवल पे संस्कार देंगे तो हमारा स्वयं का भला है और उस पीढ़ी का भला है। बंधुओं आज दुनिया में क्या हो रहा है, चारों तरफ कितना वातावरण बिगड़ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत भी गुरु कृपा से हमारे पास बचा हुआ है जो संस्कारों का कारण है, गुरुओं का कारण है, धर्म का कारण है। साधु संत आते हैं, बताते हैं, गुरु कृपा करते हैं, उसको सहेज के रखें, उसको नियम बना लें कि हमें ये आगे से आगे स्थानांतरण आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए और बच्चों को जरूर संस्कार दें, लाएं, गुरुओं के पास ले जाएं, साधु साधियों के पास ले जाएं और हम लोग जब आते हैं जो पर्यूषण के अंदर ले जाएं उनको ऐसा स्थान दिखाएं जहाँ संस्कार मिलते हैं। तो बंधुओं में मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि हमारा स्वयं का जीवन गुरु कृपा से संस्कारित हो, हमारे बेटे बहुएं संस्कारित हो और हमारे पोते पोतियां संस्कारित हो, हमारा पूरा परिवार एक आश्रम बने, क्योंकि हम सब आश्रमवासी हैं, हम सब सराय में जी रहे हैं, कभी न कभी इस शरीर को छोड़ना है, हमारा घर मंदिर बने। ये कब बनेगा? जब घर में सुसंस्कार होंगे, जब घर में सद्भावना होगी, जब घर में छोटे बड़े का आदर होगा, बड़ा जो है छोटे को वात्सल्य दे, छोटा बड़े को सम्मान दे। बंधुओं ये गिव एंड टेक की फॉर्मूले से घर चलेगा, सिंगल साइडेड वन वे ट्रैफिक से घर नहीं चल सकता। तो आप सभी मंगल भावना शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय हो, संस्कारित हो, गुरु कृपा हम सब पे बरसती रहे। ओम अरम
परम आराध्य आचार्य प्रवर को वंदन। सम्माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान नादेव साहब कानपुर शहर के रावत साबिका साहब, जैसा कि आज निर्धारित दिवस जप दिवस और हमने सामूहिक जप भी किया, ऐसा तन्मयता पूर्वक हमने जप किया। इस प्रकार हम जप करते हैं तो हम सावज्य प्रवृत्ति से बचते हैं, यह है समूह धर्म, और जप करते हैं तब कर्मों की निद्रा होती है। इस प्रकार जप के द्वारा संवर और निद्रा दोनों धर्म की आराधना होती है। इसलिए हमें जैसा कि अभी बताया गया घर में संस्कार हो तो एक संस्कार ये भी हो कि घर में हमारे जप चलता रहे, और जप वैसे भी कर्म निद्रा का साधन है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है, अक्षम है और जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, चल फिर नहीं सकता है, वह तपस्या नहीं कर सकता, तो तपस्या का एक साधन है जप। तो घर में निरंतर जप चले तो घर में सुख शांति भी रहती है और घर में पवित्रता भी रहती है। तो मंत्र क्या है? मंत्र ध्वनि की वो ऐसी तरंगे है जिससे हमारे कर्म करते हैं। जब मंत्र वह है जिससे हमारे मनन शक्ति को मनन शक्ति प्राप्त होती है और मंत्र वह है जिससे हमारे कार्य करने कर पर के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। मन के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसके संघर्षों से वह विविध शक्तियों को आकर्षित करता है, इस प्रकार हमारी विपदाएँ आपदाएँ भी कम होती हैं। तो हम मंत्र कैसे करें? जिस प्रकार एक किसान खेती करता है और खेती के नियमों को नहीं जानता है उसका उचित परिणाम उसे नहीं मिल सकता, इसी प्रकार जब करते हैं तो विधि से करें। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा ऊंची स्वर में हम उस जप को करें, फिर उसको मंद करें, फिर हम धीरे धीरे सिर्फ होठों के बीच से ही वो मंत्र की आवाज़ निकले और उसके बाद में हम होठों को भी बंद कर दें और खाली हमारे मानसिक जप ही चलता रहे। इस प्रकार तन्मयता से मानसिक जप करते हैं तो हमारा आभा मंडल भी पवित्र होता है और विविध शक्तियों को भी हम आकर्षित कर सकते हैं। मगर जरूरी है हमारा जप करते समय हमारा मन हमारे वश में रहे। यदि मन वश में नहीं है, मन भटक रहा है, तो हम उचित परिणाम ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक युवक ने सोचा कि मुझे देवता को वश में करना चाहिए, इसलिए मैं मंत्र का जप करूं। वह मंत्र का जप करने लगा। देवता ने सोचा कि ये मुझे अपने वश में करना चाहता है, मैं भी इसकी परीक्षा ले लूं कि ये कैसा है। देवता प्रकट हुआ और उसको कहा कि क्या कर रहे हो? कि मैं जप कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? देवता को वश में करने के लिए कर रहा हूं। तो उसने पूछा देवता ने, क्या तुम्हारे पुत्र और पत्नी तुम्हारे वश में है? कि वो तो नहीं है। क्या तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारे वश में है? कि वो तो नहीं है। क्या तुम्हारे मन तुम्हारे वश में है? कि वो नहीं है। बंद करिए नौटंकी, नहीं तो मारा जाएगा। इस प्रकार हम मन को भटकने न दें, जब करते हैं मन को हम स्थिर रखें। तो हम जब करते हैं इससे कई हमारी आपदाएं कटती हैं, कई काम सरल बनते हैं, कई विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और हमारे सामने जो संकट आए हुए होते हैं वो भी दूर होते हैं। हम ढाल में नित गाते भी है और ढाल भी है, जबलपुर जावता चंपक मुनि ने शेर दो प्रवर की मिल गया जियो, भिखू साम भिखू साम नाम से जाने कहो तो तीस हाथ शेर दूरा चल गया जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु रो में साजो साजो मारो जियो। और निरंतर हम जप करते हैं हमारा संयम का मार्ग भी पुष्ट होता है। तो हम जब क्यों करें, प्रश्न ये होता है, तो हम बताया गया कि देव आराधना के लिए जब करें। बहुत सारी मनोकामनाएं हमें करनी पड़ती है, गृहस्थी है, ऐसे ऐसे हमारे विचार आता है, उसके लिए मनोकामना भी करती है, करनी पड़ती है। एक बार सैनिक ने अभय कुमार को कहा कि रानी को दोहद हुआ है, अकाल में बरसात करवाओ। अब समय नहीं बरसात का, बरसात हो कैसे? तो अभय कुमार ने केला बचता और भोजनशाला में जाकर अपने मित्र देव का स्मरण करने लगा, उसका जप करने लगा। तो मित्र देव प्रकट हुआ और बोला, क्या काम है? कि अकाल में बरसात करनी है, ये हो जाएगी। इस प्रकार उस देव ने बरसात की और रानी का दोहद भी दोहद पूरा हुआ। तो हम देव आराधना के लिए जप करें। और दूसरा है विघ्न बाधाएं, विघ्न निवारण के लिए। हम गृहस्थी हैं, कई तरह की बाधाएं आती है, कष्ट आते हैं। कुछ बाधाएं ऐसी होती है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, हम उससे संघर्ष कर भी उसका निवारण कर सकते हैं। मगर कुछ बाधाएं ऐसी होती है जिससे हमें मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है, देवी देवताओं का स्मरण भी करना पड़ता है। तो विघ्न बाधा के लिए हम ये देवताओं का और मंत्रों का, इष्ट मंत्रों का हम स्मरण करें, जप करें, जिससे हमारे असंभव कार्य भी संभव बन सकते हैं। और तीसरा है आत्म आराधना के लिए। हम अपनी आत्मा की आराधना के लिए, हम अपनी गर्भ निद्रा के लिए हम जप करें। जब तक जप चलेगा आत्मा की स्मृति होती रहेगी और हमारे कर्मों की निद्रा भी होती रहेगी। मगर सिर्फ मंत्रों को जानने और सिद्धांतों को जानने से कुछ नहीं होगा, हम तन्मयता से उन मंत्रों का जप करें। वैसे देखा जाए तो हमारे तेरापन समाज में भी कई तरह के मंत्र है, ओम विष्णु विघ्नहरण वगैरह, मगर हमारी आस्था का प्रधान और मुख्य मंत्र है नमस्कार महामंत्र, जिसका अभी स्मरण किया, तो उसका हम निवार ये निरंतर जप करें। और देखा गया ऐतिहासिक घटनाएं भी है कितनी, कि इस जप के द्वारा कितनी बाधाएं दूर हुई है। उस प्रसंग आता है शीलवती सुभद्रा का, उज्जैनी नगरी की थी, बड़ी संस्कार संपन्न, विवेक संपन्न, विनय संपन्न थी, और उसके पिता का यह संकल्प था मैं इसकी शादी जैन समाज में ही करूँगा, और उसको चाहता था, उसको प्राप्त करना चाहता था एक बौद्ध अनुयायी बौद्ध दान। उसने जैन होने का मुखौटा रचा, जैन होने का नाटक किया और सब क्रियाएँ जैन जैसी करने लगा, आखिर उनकी शादी हो गई। और जब सुभद्रा उसके ससुराल पहुंची और वहां का वातावरण देखा तो जैसे उस पर हिमपात हो गया, मगर सुभद्रा न घबराई न घर से भागी। उसने नमस्कार को अपना ये हितेशी भला करने वाला समझा और उसका निरंतर जप करने लगी। वैसे भी वह धार्मिक महिला थी, उसने निरंतर बड़ों का सम्मान करना, छोटों का वात्सल्य देना और नौकरों के साथ समझदारी पूर्वक काम करना, ये अपना ध्येय बना लिया और निरंतर नौकार मंत्र का जप कर दी। उसके नौकार मंत्र से वो घर के जो बच्चे थे वो भी जप करने चालू हो गए। यह देखकर उसकी सासु उसे जल बुन जाती, उसे लगता ये तो कोई जादू करती है जो इस घर पर जादू टोना कर रही है, मगर वह निरंतर अपने इसका स्मरण करती रहती, नौकार मंत्र का जप करती रहती। एक बार जिन कल्पी साधु घर में गोचरी के लिए आए, देखा उस साधु के लिए साधु के आँख से पानी टपक रहा है और उनके आँख में एक घास का तिनका भी है, मगर जिन कल्पी साधु अपने शरीर की संभाल खुद नहीं करते। सुभद्रा ने यह देखा तो अपने जीव से उस तिनके को बाहर निकाल दिया, और ये दृश्य जब साधु ने देखा तो उसने घर में बहराम मचा दिया और उसको कुलता भी कलंकनी भी करार दिया, और एक सती स्त्री एक स्त्री अपने ऊपर ऐसा कलंक आए उसको सहन कैसे कर सकती थी। उसने उसी समय चौबी हाथ पचक लिया और निरंतर नमस्कार महामंत्र का जप करने लगी, और नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से शासन देवी का सिंहासन डोलायमान हुआ। और सवेरे देखते हैं चंपा नगरी के चारों द्वार बंद है। राजा ने बहुत कोशिश करवाई, गांव व नगर वालों ने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, मगर कोई संभव नहीं हो सका। तब देववाणी हुई कि जो भी सती दूध के धागे में छलनी को बांधकर कुएं से जल निकालकर यदि दरवाजों को छिड़केगी तभी ये दरवाजे खुलेंगे। अनाउंसमेंट हुआ और नगर की कितनी संभ्रांत सती जो अपने आप को मानती थी वो आई और अपने अपने भाग्य का ये देखा और चलनी बांधकर जल निकालने का प्रयास किया, मगर सूत के धागे में कहाँ चलनी टिकने वाली थी। कुएं पर चलनी का ढेर हो गया मगर कोई जल नहीं निकाल सकी। उधर सुभद्रा ने किया कि सासू जी आज्ञा दे और मैं भी जाऊँ। ये बात सुनी तो वो सासू और जल भून गई कि बड़ी आई सती बनने वाली, मगर नमस्कार महामंत्र का जप करती हुई और परम पुरुषार्थी थी सुभद्रा कुएं पर पहुंची और नमस्कार महामंत्र का जप करके चलनी सूत के धागे से चलनी को बांधा और कुएं में डाला और देखते ही देखते पानी आ गया और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और उसकी जय जयकार करने लगे। उसने चंपा के तीन दरवाजों पर पानी छिड़का और तीनों द्वार खुल गए और लोगों ने कहा कि चौथा द्वार भी खोलिए कि नहीं और कोई सती सावित्री भविष्य में होगी तो वो भी अपने भाग्य को अजमा सकती है। आज भी भरद्वार किसी सती का इंतजार कर रहा है। तो यह ताकत है नमस्कार महामंत्र में, जिससे कई विघ्न बाधाएं दूर होती है। तो हम जब करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि द्रव्य जैसे हमारे पास आभूषण वगैरह न हो, क्षेत्र कोलाहल भरा न हो, शांत हो, काल समय सवेरे 4 से 6 के बीच का प्रातः काल का हो, तो वो समय में हमारे हमारे पर एक गुरु दृष्टि भी पड़ती है और आसन बैठ के लिए बैठने के लिए पूर्ण का आसन हो, भाव शुद्ध हो और तन्मयता के साथ जप करें और गुण हम जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसके गुणों को पहचान कर हम उसका जप करें। जैसे विद्या के लिए कर रहे हैं तो हम सरस्वती का जप करें, विघ्न बाधाओं के लिए कर रहे हैं जैसे उत्सर्गहर स्रोत है, ओम भिक्षु है, ओम अभिराजी को नमः है, इस प्रकार के जप करें, मगर उसके मंत्र के गुण को पहचाने कि हम किस लिए हम जप कर रहे हैं। और दिशा पूर्व दिशा हो वह सिद्धिदायक है, अंधकार नाशक है, और उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ध्रुव तारा स्थित है जो उससे निरंतर हमें ऊर्जा मिलती है, और ये दिशा अगर संभव नहीं हो तो पूर्व दिशा में हम जप कर सकते हैं। और मुख्य बात है तन्मयता से जप करें, जैसे अभी हमने जप किया, और जैसा हम बनना चाहते हैं उसी को हम स्मरण करें, उसी को हम ध्यान में रखें। जैसे अरहम बनना अरहत बनना चाहते हैं, अरहम का जप करते हैं हम उसका फीलिंग ऐसी लाए कि हम वह अरहत ही है, मतलब ये परिवर्तन का एक सूत्र है नाद योग। जो व्यक्ति परिवर्तन करना चाहता है वो वैसा ही शब्द का उच्चारण करे जैसा वह बनना चाहता है, उसी तरह का पिक्चर हमारे सामने लाए तो हम उस जैसे बन सकते हैं। और मुख्य बात है उच्चारण शुद्धि। यदि हमारे उच्चारण शुद्ध नहीं है और मंत्रों में हम भूल कर रहे हैं तो हमारे को वो फल नहीं मिल सकता। देवता दानवों में युद्ध हुआ और देवता दानवों पर भारी पड़ रहे थे, तो देव के राज ने मंत्र का जप किया और उसने मंत्र का जप किया कि इंद्र शत्रु वर्धस्व, अर्थात इंद्र का शत्रु बढ़ रहा है, अर्थात दानवों की सेना बढ़ रही है। इस प्रकार के जप से दानव देवताओं पर हावी हो गए, मगर प्रमाद देखिए मंत्र का जप करते करते प्रमाद हुआ और वह जप करने लगा इंद्र शत्रु वर्धस्व, अर्थात जो इंद्र शत्रु है वह बढ़ रहा है, तो वह इंद्र की सेना विजयी हो गई। इस प्रकार हम उच्चारण शुद्धि रखें और पूर्ण भावों के साथ में हम जप करें, जैसा कि हमारा महामंत्र हमारे श्रद्धा का मंत्र है, उससे कहीं शारीरिक फायदे भी है। जिस प्रकार नमो अरिहंतान सफ़ेद रंग का परिचय है, इस सफ़ेद रंग के ध्यान करने से WBC सफ़ेद रंग ब्लड रक्त कण बढ़ते हैं जिससे हमारे रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है और अन्य अन्य बीमारियां हमारे पर हावी नहीं होती है। दूसरा है नमो सिद्धांत जो कि लाल रंग अग्नि के कलर का प्रतीक है, जिससे हमारे RBC रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं जिससे हमारा आलस्य भी दूर होता है और स्फूर्ति भी बढ़ती है। और तीसरा है नमो आयरियान पीले रंग का प्रतीक है, ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर पीले रंग का ध्यान करते हैं, हमारी मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और चौथा है नमो उपजायन जो कि ग्रीन कलर का परिचायक है, और हम देखते हैं डॉक्टर के पास ऑपरेशन होता है तो वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रहा है, उसका कारण क्या है? कारण है दूसरे की बीमारी, जो पेशेंट की बीमारी है वो मेरे पे नहीं लग जाए, हावी न हो जाए, इसलिए वो ग्रीन कलर का पहनता है। तो इससे हम भी ग्रीन कलर का ध्यान करते हैं तो कई बीमारियों के कीटाणु हमें नहीं लगते हैं और रोग प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। और पांचवा है नमो लोहे तुपान, अर्थात डार्क ब्लू ब्लैक जैसा कलर, हम वकील को देखते हैं वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनता है, वैसा ही नेवी ब्लू कलर होता है, तो उस पर दूसरों के बीच में जो उसका प्रतिपक्ष है उसके विचारों का प्रभाव उस वकील पर नहीं पड़ता है, इसलिए वो कोट पहनता है। इसी प्रकार हम भी अगर नमो लोहे तपसावनम का नीले रंग का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो दूसरों के कुविचारों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। तो हम जप दिवस पर जप किए प्रयोग करें और कर्म निद्रा के द्वारा हमारे आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना का एक मंत्र है, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता है।